नमस्कार, मैं रविश कुमार। जितने स्पष्ट किसान थे कि कोर्ट की कमेटी में नहीं जाना है, उतना ही स्पष्ट कोर्ट था कि कमेटी बनानी ही है। कमेटी बन गई और सदस्यों के नाम आ गए, चीजें वायरल हो चुकी हैं। सरकार भी चाहती थी कि कमेटी बन जाए, सरकार नहीं चाहती थी कि कानून के लागू होने पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है। सोमवार को लगा था कि सरकार कटघरे में है, मंगलवार को लग रहा है किसान कटघरे में है। इससे पहले आप यह पूछें कि कोर्ट ने कमेटी क्यों बनाई, कोर्ट ने इसका भी जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कमेटी अपने लिए बना रहे हैं। कमेटी का सुझाव इस मामले की सुनवाई की शुरुआत से ही साथ साथ चल रहा था। क्या कमेटी ही इस समस्या के समाधान का अंतिम रास्ता है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने लिए कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी ताकत हमें कृषि कानूनों के गुण और दोष के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करने से नहीं रोक सकती है। यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। समिति यह बताएगी कि किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए और फिर वो कानून से निपटेगी। हम कानून को सस्पेंड करना चाहते हैं, मगर सशर्त, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। आप सरकार के पास जा सकते हैं, तो कोर्ट के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? हमें नाम दीजिए। हम ये नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। कोर्ट ने कानून को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड नहीं किया है। अदालत ने कहा है कि कमेटी का गठन उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जब सबसे बड़े पक्ष किसानों को उस कमेटी से कोई उम्मीद ना हो, जरूरत ना लगे, तो फिर कोर्ट को कमेटी क्यों बनानी चाहिए? क्या कमेटी से बात ना करने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, नोटिस जारी होंगे, या सरकार की तरह कमेटी से बात करने वाले किसान खोजकर लाए जाएंगे? किसानों ने सोमवार रात ही साफ कर दिया था कि कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। मंगलवार को भी उनका फैसला यही था।
ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਸੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇਅ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਝਟਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਤਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਫੁੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਕੈਸੇ ਦੇਖਤੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਕੋ?
देखो जी, इस निर्णय को असी ऐसे जानते हैं भी जो सरकार मोदी सरकार जा उन्होंने कुछ सहमति सी मंत्रियों की, जो हमारे हमसे कराना चाहते थे इनको रिपील की बजाय इनको फ्रीज में या होल्ड कराना चाहते थे या कमेटी बनाना चाहते थे, वो आप नहीं बना सके। वो जो कुछ आप कराना चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट के राही वही बात कराना चाहते थे।
सुप्रीम कोर्ट ने किया है सर, कमेटी के सामने जाएंगे आप लोग?
कमेटी के सामने तो आज हमारे वकील थे जो, वो भी नहीं गए, आज सुनवाई में भी नहीं गए। इसलिए कल कह दिया, असी प्रेस में बयान देकर, असी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उस टाइम नहीं था, इसलिए असी स्टेटमेंट देकर कल ही कह दिया था भाई असी कमेटी का पार्ट नहीं बनेंगे, कमेटी में नहीं जाएंगे।
तो इससे फिर ये संदेश नहीं जाएगा फूल साहब कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं, ये संदेश जाएगा इससे? तो
नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसे की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट असी समझते हैं भी जो कानून है ये पार्लियामेंट ने बनाए है, मोदी सरकार ने बनाए है, मोदी सरकार से ही रद्द करवाने हैं, भावें वह पार्लियामेंट का सेशन करा के रद्द करा दें, भावें किसी और रास्ते रहें।
आंदोलन को समस्या मानकर समाधान के लिए कोर्ट ने कमेटी बनाई। अब अगर उस कमेटी में आंदोलन के किसान ही ना जाएं तो क्या यह नई समस्या नहीं होगी? क्या कमेटी के गठन के बाद अब आंदोलन के भी हटाने के आदेश दिए जाएंगे? कोर्ट ने कई बार कहा है वैसे कि प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन यह भी कहा है कि वह देख सकता है कि जहां प्रदर्शन किया जा रहा है क्या वहीं किया जाना जरूरी है। आज बहस के दौरान याचिकाकर्ता के एक वकील ने कोर्ट को ध्यान दिलाया, हरीश सालवे ने, कि किसान आंदोलन की पैरवी कर रहे वकील दुष्यंत दवे एचएस फुल्का, प्रशांत भूषण और कोलिन गंजालविस पेश नहीं हुए हैं। इनमें एचएस फुल्का ने ट्वीट किया है कि उनके क्लाइंट मुवक्किल किसानों ने ही कहा कि आपकी जरूरत नहीं है कोर्ट में जाने के लिए। हमने फैजान मुस्तफा से इस बारे में पूछा कि क्या आज आदेश का दिन नहीं था, क्या वकीलों को हाजिर नहीं होना चाहिए था।
मैं समझता हूं रवीश कि किसान आंदोलन को जो लोग वकील जिनकी कल सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की थी, अगर वो कोर्ट में आज होते तो बेहतर होता, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर कल इशू हुआ था उसमें सिर्फ ये दिया था कि कोर्ट अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करेगा। आज कोर्ट में अच्छी खासी बहस हो गई, ये बहस और कल के ऑर्डर में अब अंतर हो गया। मैं ये समझता हूं कि इन वकीलों को कोर्ट में रहना चाहिए था। अगर ये कोर्ट में होते तो ये शायद कमेटी के लिए कुछ अपने नाम या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के नाम दे सकते थे। बेहतर यह है कि हम कोर्ट की मर्यादा और उसके सम्मान को बनाए रखें और हम अदालत के फैसले से खुश हों या ना खुश हों या उसका क्रिटिसिज्म करें, आलोचना करें, वो सब सही है, लेकिन किसानों के इन वकीलों की सुप्रीम कोर्ट में अनुपस्थिति मुझे कुछ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी।
आज आदेश का दिन था लेकिन उसके पहले सवाल जवाब के कई दौर चले। अब यह बात फैसले के बाहर होने लगी है कि जब आंदोलन के किसान कमेटी से बात नहीं करेंगे तो क्या कमेटी आपस में बात करेगी। हमने फैजान मुस्तफा से कुछ सवाल पूछे कि कमेटी ही क्यों, क्या कोर्ट कमेटी के सुझाव पर कानून को रद्द कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अपने उद्देश्य के लिए कमेटी बना रहे हैं। अपने, इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोर्ट कहता है कि कानून संविधान सम्मत है तो किसान संतुष्ट हो जाएंगे, आंदोलन गैर कानूनी हो जाएगा। बहुत से खराब कानून संवैधानिक तरीके से ही पास हुए हैं, क्या किसानों को जबरन कमेटी के सामने आना होगा?
सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि कोई किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को चुनौती देने नहीं गया। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि शायद केरला राज्य सुप्रीम कोर्ट गया और उन्होंने उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी। ये जो PIL हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है, ये कुछ लोग हैं जो गए हैं प्रोटेस्ट को हटाने के लिए। और आप देखिए कि जो मेन मुद्दा वो लेके गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि हम प्रोटेस्ट हटाने के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कल उन्होंने कहा ये प्रोटेस्ट गांधी जी की तरह का आंदोलन है, तो प्रोटेस्ट पे बात नहीं हुई। कोर्ट को इन लॉज की कि वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं उस पर प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट प्रोनाउंस करती है संवैधानिकता पर। और आपने सही कहा, कई लॉज ऐसे हैं जिनको संवैधानिक कहा जा सकता है लेकिन वो लॉज अच्छे लॉज नहीं हैं। जितने भी ब्लैक लॉज हैं, टाटा है, पोटा है, यूपा है, टाटा की संवैधानिकता को भी अपहोल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सारे मानव अधिकार के संगठन जो हैं वो इन लॉज को अच्छा नहीं मानते हैं। ये कमेटी कोर्ट ने कहा कि हम अपने लिए बना रहे हैं, तो कोर्ट को संवैधानिकता डिसाइड करनी है। कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी कोर्ट की जो लॉ की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई भी शब्द ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कोई लॉ का एक्सपर्ट नहीं है। और जिस तरह की न्यूज आ रही है कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो स्वयं आर्टिकल लिख चुके हैं या एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिल चुके हैं और इन कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। हम ये जानते हैं कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है और न्यायपालिका को जो कमेटी बनानी चाहिए वो भी इंडिपेंडेंट हो। जरा सी जो इसमें लोग हैं वो एक्सपर्ट जरूर हैं या किसान नेता हैं भूपेंद्र जी उसमें, लेकिन वो क्या इंडिपेंडेंट राय देंगे इस पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उनका ओपिनियन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। कोर्ट को अधिकार होगा कि वो कमेटी की रिकमेंडेशंस को रद्द कर दे, लेकिन ये बात समझ लें कि अगर कमेटी ये कह भी देती है कि ये लॉ कृषि के लिए बहुत अच्छे हैं, तब भी वो जो मूल प्रश्न है कि क्या कृषि के मामले में केंद्र को कानून बनाना चाहिए, उसका उत्तर नहीं मिलता। ये बात सही है, आज आर्गू किया गया सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कि दो दशकों से इन पे रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, कई कमेटी थी जिन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, लेकिन क्या उन कमेटीज ने कहा कि संसद कानून बनाए, कृषि का मुद्दा है, राज्य अगर कानून बनाए तो बेहतर होगा।
अब आते हैं कमेटी के सदस्यों के नाम पर। जिस तरह से किसानों ने मना किया कि उन्हें कमेटी मंजूर नहीं है, उसी तरह से पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने समिति की अध्यक्षता का प्रस्ताव ठुकरा दिया। किसान नेताओं के वकील एपी सिंह ने कहा कि समिति में जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जोसेफ कुरियन होने चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि समिति में कौन होगा नहीं होगा यह अदालत तय करेगी। कोर्ट ने अपनी तरफ से नाम तय कर दिए। तब भी सवाल पूछा जा रहा है कि ज्यादातर सदस्यों की राय तो सरकार से ही मिलती जुलती है। जैसे समिति के सदस्यों में से एक प्रोफेसर अशोक गुलाटी शुरू से ही इस कानून के समर्थन में हैं, कृषि कानूनों के समर्थन में अनेक लेख लिख चुके हैं। आपको कानून के समर्थन में इनके नाना प्रकार के इंटरव्यू मिल जाएंगे। डॉक्टर प्रमोद जोशी कृषि वैज्ञानिक हैं, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट दक्षिण एशिया के निदेशक हैं, इसके पहले हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के निदेशक रह चुके हैं। प्रमोद जोशी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा है कि कृषि कानूनों में जरा भी बदलाव हमारी कृषि को वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने से रोक देगा। इसी अखबार के एक अन्य लेख में लिखते हैं कि इन तीन कानूनों को हटाने का मतलब है खेती के पूरे सेक्टर की बर्बादी और किसानों की भी। प्रमोद जोशी ने यह भी लिखा है कि जब पैदावार कम होती थी तब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम आया था, अब जब पैदावार सरप्लस है तब न्यूनतम समर्थन मूल्य से आगे सोचने की जरूरत है। प्रमोद जोशी ने सरकार की तारीफ की है कि इन सुधारों के फायदे को लेकर उसका प्रचार आक्रामक है। एक ट्वीट में लिखा है कि यह कमाल और दिलचस्प प्रदर्शन है कि किसान ही चाहते हैं कि व्यापारी के लिए कंपटीशन ना हो। भूपिंदर सिंह मान राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। 14 दिसंबर 2020 के हिंदू में एक खबर छपी है कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने कृषि मंत्री से मिलकर कुछ संशोधनों के साथ कृषि कानूनों का समर्थन किया है। ज्ञापन में यह भी लिखा था कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों से दिल्ली में आए कुछ तत्व इन कानूनों के प्रति गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरकार की भी लाइन है। भूपिंदर सिंह मान इसी समिति के अध्यक्ष हैं। अनिल घनवत भी कानून के समर्थक हैं, महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं, खुले बाजार की नीति के घनघोर समर्थक। इनका मानना है कि कृषि कानूनों से किसानों का भला होगा। 40 साल में पहली बार किसानों के लिए खुले बाजार का अवसर आया है। अगर दो राज्यों से ही हो रहे विरोध के दबाव में इसे वापस लिया गया तो इस अवसर का अंत हो जाएगा।
गवर्नमेंट ही इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई थी, हम उसमें कोई पार्टी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाने का किया और बना उन लोगों की दी जो रपील के अलावा अमेंडमेंट के दौर में वो लोग हैं जो इन कानूनों के पक्ष में लिखते हैं, इसलिए उस कमेटी का तो सवाल ही नहीं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ये विनती करना चाहते हैं कि वो सुओ मोटो लेके इनको रपील करे, अदरवाइज गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट हम सीधा करेंगे और रपील कराने के लिए।
सर, सरकार कोर्ट ने ये कहा है कि आप जब सरकार से बात कर सकते हैं तो कोर्ट से बात करने में, समिति से बनाने में क्या मामला है?
कोर्ट का काम इसकी संविधानिकता को, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जज करने का है। गवर्नमेंट के साथ हमारी सीधी वार्तालाप, ये कानून का मामला है, ये एक कानून का जो दायरा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आता है, तो उसके लिए एग्जेक्टिव के साथ सीधी, जो हमारी कार्यपाल का है उसके साथ सीधी, जिसमें कैबिनेट है उसके साथ सीधा बातचीत हो रहा है। इसलिए कोर्ट, इसको कोर्ट का दायरा और है, ये कोर्ट अपने दायरे को उल्लंघकर, जिसको बोलते हैं कि उसको पार जाकर, उसके आगे जाकर इस मामले में कार्यपालिका की भूमिका मत निभाए। हम लोग,
आप लोगों को ये जो चार लोग हैं इस पर भी आप लोग अपना संशय बता रहे हैं। अशोक गुलाटी जी के नाम पर आपको समस्या है, जो चारों सदस्यों के नाम पर भी समस्या है, ऐसा क्या है?
देखिए, वो चारों व्यक्ति जो है वो इन कानूनों के पक्ष में लिखते रहे, उनके वेरियस आर्टिकल्स हैं। हमने कमेटी मांगी नहीं, हम लोग अपील की डिमांड पे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और चिंता जाहिर की वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम भी अपने आप को जोड़ते हैं। पर साथियों, उस चार सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, खेत और खलिहान की मोदी जी की साजिश के साथ, बेचने की साजिश के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी?
ये रणदीप सुरजेवाला थे, इन्होंने कमेटी के चारों सदस्यों के नाम को खारिज किया और आलोचना की। आपको मीडिया में अनेक प्रसंग मिल जाएंगे इन सदस्यों के बारे में सरकार की नीति का समर्थन करते हुए। इन सदस्यों की राय देखकर यही लगता है कि सरकार को राय देने की अब जरूरत नहीं, या फिर ऐसे भी कह सकते थे कि कमेटी बनाने की क्या जरूरत है, सरकार की ही राय ले लेते। तो क्या कानून के समर्थक समिति के रूप में कानून के विरोधियों से बात करने जाएंगे? 17 दिसंबर की सुनवाई में पी साईनाथ का नाम आया था, वो नाम क्यों नहीं आया, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। किसानों के लिए लगातार लिखने बोलने वाले देवेंद्र शर्मा से हमने बात की कि समिति के सदस्यों के बारे में उनकी क्या राय है।
जो सरकार ने जो कमेटी बनाई है, 4 मेंबर कमेटी, जब हम उसकी कंपोजिशन देखते हैं, वो चारों मेंबर्स की जो एक इकोनॉमिक सोच किस तरफ की है, यानी कहने का मतलब है कंपोजिशन कमेटी की ऐसी है कि हम जानते हैं कि उसका आउटकम जो है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी प्री ऑर्डिनेंट, तो उसका जो आउटकम है वो तो हम पहले ही जानते हैं। तो जो सरकार ने अभी ये, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है सरकार को कि हम ये जो लॉज हैं इनको सस्पेंड रखेंगे या कुछ टेम्पररी सस्पेंड रखेंगे, तो उसका जो कोशिश था, प्रयास था, वो ये था कि वे कमेटी जो है वो किसानों से बात करेगी या और भी स्टेक होल्डर से बात करेगी। लेकिन अगर कमेटी का रुझान या कमेटी की जो एक सोच है एक तरफ ही है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है या उससे क्या बाहर निकल कर आएगा। यही बात एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी, उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट ब्रिंग अबाउट ए चेंज फ्रॉम एन इकोनॉमिक थिंकिंग विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो जो इकोनॉमिक सोच के ऊपर इतना बड़ा देश में बवाल खड़ा है, किसान जो है इतने गुस्से में है, इतना बड़ा मूवमेंट किसानों ने खड़ा किया है, आज हम उसी जो कमेटी जो उनसे बात करने की जो हमने रखी है या सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, अगर वो उसी सोच के उसमें मेंबर्स हैं, तो किसानों को जस्टिस कैसे मिलेगा, उनकी बातों को कैसे हम, जो उनका कहना है या उनका गुस्सा है या उनकी जो सोच है, उसको हम कैसे आगे लेके आएंगे कि आगे का फ्यूचर जो है किसानों का वो उसके बेस के ऊपर बना सके। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अगली हेयरिंग में कम से कम, जिस तरीके से हम देश में पब्लिक डिस्कोर्स आज देख रहे हैं और सभी ने उसमें अधिकतर गुस्सा प्रकट किया है इस कमेटी की कंपोजिशन के ऊपर, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक रीथिंकिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसमें एक ऐसी कमेटी का गठन करेंगे जो वाकई ही व्यापक हो और वो जो उस ऐसे लोगों से स्टडीड ना हो, ऐसे लोगों से भरी ना हो जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जो क्राइसिस आज देश के सामने खड़ा है, कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये मैंने हर बार कहा है कि फ्रॉम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम पीपल हु क्रिएटेड द क्राइसिस टू प्रोवाइड आल्सो अ सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ओकेजन है जिसको सुप्रीम कोर्ट को, ये मुझे लगता है कि वो अगली हियरिंग्स में इस चीज को एड्रेस करेंगे और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है उसकी तरफ फोकस करेंगे।
मिर्जा गालिब का एक शेर है, कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। ये ट्वीट किया है देवेंद्र शर्मा ने कमेटी के सदस्यों का नाम देखकर। किसानों को क्यों लगता है कि कमेटी के जरिए आंदोलन को हटाने का रास्ता बनाया जा रहा है? इसके सदस्यों का नाम देखकर अब उनकी आखिरी उम्मीद भी क्यों चली गई है?
हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है, सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां वेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए।
जो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के ऊपर रोक लगा दी है और एक कमेटी बना दी है 4 सदस्य, उसको असी रद्द करते हैं, उसको नहीं आज की मानने वाले नहीं है। ऐसी पहले ही बोल दिया था कि ऐसी किसी कमेटी में विश्वास नहीं रहते, ये डिले करने के लिए किया गया है और इसको जो 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 है कानून है उनका इसको दा पेज कानून है जो उसमें फंसाने के लिए किया गया है और संघर्ष को तार पीड़ो करने के लिए किया है।
क्या अदालत के सहारे आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा? अदालत ने अभी तक आंदोलन के अधिकार की ही बात की है, जगह को लेकर बेशक सवाल उठाए हैं। सरकार के वकील 26 जनवरी के बहाने सुरक्षा के सवाल उठा रहे हैं और अब खालिस्तान से जोड़ने लगे हैं। वैसे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि पुलिस की तरफ से हिंसा को लेकर भी चिंतित है। सोमवार को इस बात को लेकर सुनवाई होगी कि 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर की रैली की अनुमति दी जाए या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने आंदोलन में खालिस्तान से सहानुभूति रखने वाले संगठन के घुसाने की बात की है। पहले दिन से यह अभियान चलाया गया गोदी मीडिया के जरिए कि आंदोलन में खालिस्तानी और आतंकवादी हैं। किसानों ने इसका जवाब दिया और करनाल की घटना को छोड़ दें तो कहीं हिंसा नहीं हुई, आंदोलन शांतिपूर्वक रहा, अदालत ने भी कई बार कहा। लेकिन आज कोर्ट में सरकार ने भी इस बात को ऑन रिकॉर्ड कर दिया। इस बहस के दौरान समर्थन देने वाले किसानों की ओर से पेश वकील पीएस नरसिम्हा ने कहा कि आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस का प्रदर्शन में शामिल होना चिंता की बात है और ऐसे प्रदर्शन खतरनाक हो सकते हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि आरोप है कि विरोध प्रदर्शनों में मदद करने वाला एक प्रतिबंधित संगठन है, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं? तब के वेणुगोपाल ने जवाब दिया कि हमने कहा है कि खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ की है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि प्रतिबंधित संगठन को लेकर आप हलफनामा दायर करें, हमें पूरी जानकारी चाहिए।
ये तो हमारे को किसान मानने के भी लिए तैयार नहीं थे। तो ये कभी कुछ कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी हमारे को नक्सलाइट कहते हैं, माओवादी कहते हैं, कभी कहते हैं इनको चाइना चला रहा है, पाकिस्तान चला रहा है। ये तो शुरू से कर रहे हैं। ये हमारे को सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है। हमारे में कोई ऐसी कोई घुसपैठ नहीं है ना। हमने अभी हमने तो किसी राजनीतिक आदमी को कोई साथ में भटकने दिया। ये तो हमारे को बदनाम करने का सरकार का एक षड्यंत्र है। ये पूरे देश के लोग हैं और यहाँ पर विदेशी लोग, मतलब के विदेशों से भी वो लोग आए हैं जिनकी जमीन जायदाद यहाँ है, जिनके परिवार यहाँ पर है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जिनका किसानी हितों के साथ मतलब के रिश्ता जुड़ा हुआ है और हमारे पास में जा मनुष्यता के आधार पर बात कर रहे हैं। देखिए, क्या केरला भी खालिस्तान मांगता है? क्या तमिल भी खालिस्तान मांगते हैं? क्या राजस्थान भी खालिस्तान की मांग करता है? क्या यूपी भी खालिस्तान की मांग करता है? क्या एमपी भी खालिस्तान की मांग करता है? अरे इनको खालिस्तान ही क्यों दिखते हैं?
हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कम्प्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, जैसे दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है।
किसान आंदोलन अब उस चौराहे पर है जहां लाल बत्ती ही जलती दिखाई दे रही है, बाकी बत्तियां काम नहीं कर रही हैं। इस आंदोलन के दौरान प्राइम टाइम के किसी एक एपिसोड में मैंने कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत का किसान किसान नाम की पहचान की समाप्ति का समापन समारोह देखेगा। काश मेरी बात गलत होती। जय जवान, जय किसान। ब्रेक के बाद भारत महान। देश की 33% कोविड से होने वाली मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। आंकड़ा 50,000 के पार जा चुका है। 50,000 लोगों की मौत आम बात नहीं। महाराष्ट्र में इन मौतों का विश्लेषण किया गया है। इसमें पता चला है कि 71% मौतें उन कोविड मरीजों की हुई हैं जो पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। अधिकांश मौतें 69.8% पुरुषों में हुई हैं, महिलाओं में कम देखी गई हैं। गर्भवती महिलाओं में 0.14% मौतें देखी गई हैं। मुंबई से हमारी सहयोगी पूजा की रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र में मौतें 50,000 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, यानी देश में हुई कुल मौतों का 33%। अब कोरोना हॉटस्पॉट महाराष्ट्र की 26,724 मौतों का विश्लेषण हुआ है, जो बताता है 71.64% मौतें को मॉर्बिडिटी यानी पहले से दूसरी बीमारी से ग्रसित मरीजों की हुई है। 46.76% मरे गए कोविड मरीज हाइपरटेंशन के भी शिकार थे। वहीं 39.49% मृत कोविड मरीजों को डायबिटीज था। 11.13% हृदय रोग के मरीजों की कोविड से मौत हुई, तो 4.97% कोविड मरीज किडनी और 3.94% मरीज फेफड़े की तकलीफ से पहले से ही गुजर रहे थे। अधिकांश मौतें 69.8% पुरुषों में हुई, जबकि महिलाओं में मृत्यु का प्रतिशत 30.2 है। वहीं कोविड संक्रमित गर्भवती महिलाओं में महज 0.14% मौतें दिखी हैं। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप आफ्टे बताते हैं कि इस विश्लेषण से हाई रिस्क मरीजों की पहचान हुई है।
85% जो मृत्यु है वो 50 साल के ऊपर के गट में या समूह में जो व्यक्ति है उनमें हुई है, और अगर हम देखें तो 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनमें लगभग 65% के लगभग मृत्यु है। अगर इसका जेंडर वाइज हम एनालिसिस करें तो उसमें पुरुषों की मृत्यु की संख्या ये लगभग 70% है, उसके मुकाबले औरतों में मृत्यु की संख्या काफ़ी कम है। दूसरी बात इसमें ये उभर के सामने आ रही है कि जिनको कोई ना कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, तो ऐसे लोगों में 71% डेथ हुई है, और जिनको नहीं है उनकी संख्या काफ़ी कम है। जो ये बीमारियां है उसमें से हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा पाई गई है, लगभग 47% लोगों में हाइपरटेंशन है, लगभग 39% लोगों में डायबिटीज़ भी है, और ये दोनों बीमारी जिनमें है ऐसे भी लगभग 22% लोग हैं। अगर हम देखें गर्भवती महिला है तो उनमें ज़्यादा मौतें नहीं पाई गई है, उनका औसत बहुत कम है। तो फिलहाल ये विश्लेषण हमें ये बताता है कि इसमें हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सा है।
कोमॉर्बिड मरीजों में भी अब मौतें नियंत्रण में है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स BMC अस्पताल KEM के डॉक्टर कहते हैं कि अगर ऐसे मरीज भी जल्दी अस्पताल पहुंचते तो इतनी संख्या में मौतें नहीं होती।
जो पेशेंट जब भी आते थे, सबसे पहले जो पैंडेमिक की शुरुआत में प्रेजेंटेशंस जो हम लोग देखते तो काफी लेट देखते थे क्योंकि लोगों को पता नहीं था। जब इसके बारे में जागरूकता बढ़ी तब लोग जल्दी आने लगे। अभी हम लोग देखते हैं कि इन पिछले कई महीनों में, 2 या 3 महीनों में, इन पेशेंट्स के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें भी काफी सारा घटाव हुआ है, काफी कमी हुई है। इसका कारण यह है कि पेशेंट जो है जल्दी अस्पताल में प्रेजेंट हो रहे हैं, वक्त पे अपना ख्याल रख रहे हैं, और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है वो अपने आप को इतना सतर्क रखते हैं कि अगर कुछ भी कोविड जैसे सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। तो यही मैं कहूंगा कि अगर किसी को कोमॉर्बिडिटीज है तो वो जल्दी में जल्दी अपने डॉक्टर की सलाह ले, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कोविड या कोविड जैसे कोई लक्षण दिख रहे तो।
मृत्यु दर में काफी कमी आई है पिछले जो 10 से 12 महीने हुए हैं, वो इसी का है कि हमें पूरे 12 महीने में ये पता चला है कि ये कैसे बीमारी आगे प्रोग्रेस करती है। दवाइयों का, अलग अलग दवाइयों का जैसे जैसे रिस्पॉन्स बढ़ा है, जो हम ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं उसमें भी कॉमनली स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपका अगर सप्रेस जो डायबिटीज हो या कोई आपको अंदर पहले से हो 8-10 साल से बीमारी हो जो आपको पता नहीं हो, वो दवाई देने के कारण भी कई बार ऊपर बाहर आ सकती है।
इस विश्लेषण से महाराष्ट्र सरकार कोविड के टीकाकरण के लिए हाई रिस्क मरीजों की पहचान तो कर रही है, साथ ही कोविड के इलाज में इन मरीजों को बचाने की समझ भी पुख्ता कर रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।